पहला ग्रंथ उसको 11वां अध्याय थोड़ा सा विस्तार से देखना चाहेंगे कि प्रभु बोझ की क्या महत्ता है। कई बार हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इसकी हमें गंभीरता को और हमें देखना है, कोशिश करना है कि हम कैसे कर सकते। प्रभु सहायता करें कि हम गंभीरता को सीख देखें जाने और हम क्या नाम से और अधिक प्रभु के निकटता में बढ़े, आगे बढ़े, परमेश्वर वचन का आदर करें और हमारा परिवार भी अगर विश्वासी है तो प्रभु की बोझ में समागी हो सके और अधिक इस वर्ष में आगे बढ़ते हुए सब परिवार प्रभु की महिमा कर सके। सो पहला करते हैं उसका 11 अध्याय हम प्राय पढ़ते हैं, तो उसी को स्थल को पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा लंबा स्थल होगा और तब थोड़ा समझना चाहेंगे। पहला ग्रंथियों उसका 11 अध्याय 17 पद से मैं पढ़ूंगा, जल्दी से कुछ पद बीच में पढ़ते हुए। प्रभु भोज की महत्वता, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉर्ड सपर, यह आज का मुख्य थीम है, प्रभु भोज की महत्वता। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा महान याजक है। 17 पद से मैं पढ़ रहा हूँ पहला ग्रंथियों उसका 11 अध्याय 17 पद से। परंतु अब ये आदेश देते हुए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने से भलाई के बदले बुराई ही अधिक होती है। पहली बात यह है कि मैं सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया होकर एकत्रित होते हो तो तुम्हारे मध्य फूट होती है। मैं इस बात का कुछ विश्वास भी करता हूं। तुम्हारे मध्य दलबंदी भी अवश्य होगी, जिससे कि तुम में से जो खड़े हैं वे प्रकट हो जाए। अतः जब तुम एकत्रित होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाते समय प्रत्येक दूसरे से पहले अपना भोजन झपट कर खा लेता है, जिससे कोई तो भूखा रह जाता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या तुम्हारे पास घर नहीं है जहां तुम खाओ और पियो? अथवा क्या तुम परमेश्वर की कलीसिया का अनादर करते हो और जिसके पास कुछ नहीं है उसको लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं, क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? इस बात से मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूंगा। सो पहले जो भाग है पौलुस कुछ बात को समझा रहा है, टुकड़ों में लेकर चलूंगा इसको पहले भाग में। अब पहले भाग में कुछ पृष्ठभूमि है जो उस समय कलीसिया में होगी। सो अभी हम इन पदों को समझ पाएंगे क्या हो रहा था कुरिन्थी के कलीसिया। एक बात को ध्यान रखिए कि बाइबल में जब हम कलीसिया को शब्द को हम पाते हैं तो कलीसिया विश्वासियों के झुंड है, ठीक है। और किसी ने कहा है कलीसिया एक आत्मिक बीमारों का अस्पताल है। और हम कलीसिया में उस आत्मिक बीमारी से और अधिक ठीक होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर एक जन सिद्ध नहीं, कोई भी प्रभु को पाने के बाद हम बहुत ज्यादा सिद्ध नहीं हो सकते, कोई भी। तो हमें इस बात को देखना है। कई बार हम लोगों को दूसरे निगाहों से देखते हैं, कई तरह से निगाहों से। सबसे बढ़कर बात यह कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। सबसे पहली बात, हमने प्रभु से प्यार किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार। अब हमारी यह अभिलाषा है जो विश्वासी लोग हैं जो कलीसिया में हैं। कलीसिया में तीन प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। पहले वो लोग हैं कलीसिया में जो आते हैं, इस समय भी था, कुरिन्थियों में भी था, गलतियों में, बाइबल के किसी भी कलीसिया के इतिहास को पढ़ लेंगे आपको मिलेगा, कब मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो सच में जिन्होंने प्रभु को पाया और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और असली संगति और कलीसिया के महत्व को देखते हुए वो आगे। कुछ लोग होते हैं जो कहने चाहिए स्पेक्टेक्टर होते हैं, आके देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर, क्या क्या होता है, अरे प्रभु अच्छा ये लाल लाल कुछ पिला रहे हैं, अरे ये तो जाके अल्लाह मचाते हैं, अरे वहां लाल लाल पिलाया जाता है, अरे वहां खून पिलाया जाता है, गलत है। इस तरह के भी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं ठीक है हम एक कलीसिया में हम जाएंगे तो हमें कुछ फायदा हो जाएगा, ये हमें समझना है। और वो लोग अगर उनको फायदा नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं, अगर हमने प्रभु को पाया है तो प्रभु में हमें बढ़ना है, और चाहे कुरिन्थी कलीसिया पढ़ेंगे चाहे कैसी कोई भी कलीसिया करेंगे, हर कलीसिया में समस्या थी, हर कलीसिया, क्योंकि मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पर है उसमें समस्या है, मनुष्य समस्या की पोटली है, ठीक है। और परमेश्वर की सहायता से वो धीरे धीरे एक एक करके उस पोटली में से चीजें निकल के थी और परमेश्वर अपनी सुंदरता को डालता चला जाता है, ये परमेश्वर का काम। तो यहां पर जब प्रभु भोज उस समय शुरू हुआ था, नहीं तो काम दूसरे दिन, तो क्या हो रहा था, ये लोग घर घर जाकर के भोज कर रहे और उन्होंने इस भोजन को दूसरी तरह से बदल दिया था। अब इन्होंने सोचा कि ठीक है, ये प्रभु ने भोज का एक विधि रखी है, हम घर घर जाकर के भोजन करेंगे। और तब लोगों के यहाँ इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होने के बाद ये उस महत्व को खो रहे थे जो परमेश्वर का वचन के अनुसार है, और केवल एक भोजन के साथ मिलकर के करने। तब ये कहता है, तुम में से बहुत हैं जो पहले आते हैं और खा लेते हैं, दूसरे की चिंता नहीं करते। तो उन्होंने इस भोज के महत्व को बिल्कुल बदल दिया था, बिल्कुल बदल, वास्तव ये नहीं है, वास्तव ये नहीं। और उसके कारण बहुत कुछ आपस में मनमिटाव भी हो रहा है। मान लीजिए भोजन हो रहा है ना, खाना बना है, कोई आया जल्दी जल्दी साग खा लिया, बेचारे पीछे पांच छह रह गए, उनके लिए कुछ बचा नहीं। तो कई बार ऐसा स्थिति होती है जो प्रैक्टिकल है, वही ये भी चीज हो रही थी, वहां पर ये भी चीज हो रही थी। और इसलिए पौलुस उस चीज को समझा। तब पौलुस कहता, भैया सुनो, ये जो प्रभु भोज है, ये जो भोज है, इसका मतलब क्या है। तब आगे चल करके वो चीज को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उनके सोच, उनके विचार, उनकी भावना बदल गई। शायद आज की परिस्थिति में जब हम भोज लेने जाते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भोज जो है, हमारे कुछ ऐसे कलीसियां या कुछ ऐसे समूह है, कैसे समुदाय है, जिनके लिए वो भोज जो है केवल एक आशीष का काम। नहीं नहीं नहीं, हमें आशीष पानी है, हमें आशीष पानी, वो केवल आशीष का कारण नहीं है। इसके अर्थ को समझ, हमने जब तक प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को नहीं समझा है, उसके अर्थ को नहीं समझा, हमारे लिए वो बेकार है, बेकार। और इसलिए तब फिर पौलुस कहता है, तब वो कहता है 23 पद में, वो कह रहा है, इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूंगा, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है। अब यहां कह रहा है, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो प्रभु से मिली है, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही क्या करूं। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने ये कहते हुए कटोरा भी लिया, ये मेरे लहू की नई वाचा का कटोरा है, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब, जब जब तब तब, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी में खाते हो और कटोरे से पीते हो, तो जब तक, जब जब तुम इसमें से खाते हो, तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से ये रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वो प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है, तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ऐसा करता है। तो ये प्रभु भोज न केवल आशीष का कारण है, ये प्रभु की भोज हमारे दंड का भी कारण बनती है। अब क्यों पौलुस चीज को समझा रहा है, पौलुस ने किस क्यों इस बात को समझाया, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु से मिली, किस तरह से उसको प्रभु से मिली। जब हम प्रभु भोज के बारे में देख, तो हम देख ये जानना चाहेंगे कि वास्तविक रीति से इसकी, इसका शुरुआत क्या है, इसकी नींव क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है, क्यों ये मेरे और आपके लिए इस तरह से आज रखी गई है। ये अद्भुत चीज है, परमेश्वर ने क्यों इसको ठहरा दिया है। इसराइली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया, आपको मालूम है, मैं केवल कहानी रूप में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वह पाप में थे, मतलब एक बंधन में थे, मिस संसार को प्रकट करता है और मिस में थे, और बंधुओं ने 430 साल तक परमेश्वर ने उनसे कह दिया था कि तुम्हें मैं बंधुआई में भेजूंगा और तुम्हें वहां कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और ऐसा होगा और तुम विलाप करोगे, रोगे, पुकारोगे, तब मैं तुम्हारे, और उन्होंने ऐसे ही किया। और मिस फिरौन के राजा के बंधुआई में थे और फिरौन इतना अधिक उनको परेशान करता था, बहुत यातना देता था, और तब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और 80 साल मूसा को लगे, 40 साल वो तैयार हुआ और 40 साल फिर आगे बढ़ करके वही करने में आगे बढ़ा हो। और इस रीति से जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इसराइलियों को मिस से निकालना चाहा, तो कैसे निकालेगा, कैसे निकाल, अब बात जानते हैं निर्गमन में पहले अध्याय से सारी बात। पहली बात, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने मूसा से ये बात को प्रकट की कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हो। अद्भुत रीति, क्योंकि जब परमेश्वर ने सबसे पहले अपने आप को प्रकट किया था अब्राहम के साथ, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कहा था मैं अब्राहम, अब्राहम को, उसके साथ याकूब को, उसके बाद इसहाक को। निर्गमन उसका 6 अध्याय और उसका दूसरा पद में पढ़ो। परमेश्वर ने मूसा से फिर बातें की और कहा मैं यहोवा हूं, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया। जब तक याकूब के नाम से इसहाक और अब्राहम इनसे परमेश्वर बात करता था तो इनको ही संबोधित करते कहता था मैं ये हूं, और अपने आप को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके कहता था। अब निर्गमन उसके 6 अध्याय के और इस दूसरे पद में वो कह रहा मैंने उनको इस तरह से सर, लेकिन अब मैं कर परंतु दर्शन दिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर कभी नहीं प्रकट हुआ, मैं उनके नाम यहोवा के नाम से कभी नहीं प्रकट हुआ, मैंने उनके सामने अपने आप को ये कहकर प्रकट किया सर्वशक्तिमान। एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जब अय्यूब की पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो अय्यूब की पुस्तक में बार 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 38 बार लगभग सर्वशक्तिमान करके आया है। वो इसीलिए क्योंकि अय्यूब उसी समय में था और उसी समय में परमेश्वर ने अपने आप को इसी नाम से प्रकट किया था, लेकिन मूसा के नाम सामने उसने मैं यहोवा नाम का प्रकट किया। और तब उसके बाद वो कहता है, तब उसके बाद 6 पद में, इसलिए इस्राएलियों से कहे मैं यहोवा हूं, मैंने तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालना, मैं उसको उनके दास्तों से छुड़ाऊंगा, मैं अपनी भुजा बढ़ाकर और न्याय के महान कार्य करके तुम्हें छुड़ा लूंगा, तब मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र के बोझ से नीचे से निकाल ले आया है। और बार बार आप इस इन 4-5 पदों पढ़ेंगे, करीब 8-9 बार परमेश्वर जो संबोधित कर रहा है वो मैं अपने आप को मैं ऐसा करूंगा। सो यहां पर एक खास बात है कि अब परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा करके प्रकट किया है, अब परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए तैयार है क्योंकि ये पुकार रहे हैं। और मिस्र की बंधुआई, मिस्र जो है पाप का प्रतीक है, संसार का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है, उसके बंधन से निकाल रहा है, पर कैसे उसको निकालेगा, कैसे उनको निकालेगा। और निकालने के लिए जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो निर्गमन की पुस्तक में करीब 10 अलग अलग घटनाएं हैं जो फिरौन के सामने परमेश्वर करता है। अंतिम घटना 12 अध्याय में हम पाते हैं, 12, और वो अंतिम घटना जहां परमेश्वर लहू के चिन्ह के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जहां परमेश्वर लहू के चिन्ह के द्वारा उनको छुड़ाता है, लहू, और लहू परमेश्वर की दृष्टि में आराम से महत्वपूर्ण रहा। आदन की वाटिका में जब मनुष्य ने पाप किया था, परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि की थी, और आदन की वाटिका में जब मनुष्य ने पाप किया था और परमेश्वर ने जब उसके तन को, उसके नंगेपन को, जो नंगापन पाप को दर्शाता है, उसको ढकता था, तो परमेश्वर ने, हम देखते हैं वहां पर, उसको चमड़े के अंगरखे बनाकर पहनाए। और चमड़े के अंगरखे बनाने का मतलब ये था कि वहां पर सबसे पहले परमेश्वर ने लहू का इस्तेमाल किया, वहां मेमने का बलिदान हुआ और जो स्वयं परमेश्वर ने किया, और वहां पर भी हम एक गुप्त रूप से लहू के कार्य को देखते हैं। और उस समय से परमेश्वर ने ठान लिया था, उसकी योजना थी, उसकी मंशा थी, परमेश्वर स्वाभाविक परमेश्वर है, परमेश्वर की योजना अद्भुत है। हम परमेश्वर के कार्य को कई बार अपनी मर्जी से समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर सृष्टि करता है, मुझे और आपको रचने वाला है, बनाने वाला है। परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य पाप पर जीवन करे, लेकिन उसी समय से परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी और उस योजना में होकर के परमेश्वर ने उस लहू को इस्तेमाल किया, लहू को इस्तेमाल किया। और तब हम आगे चल करके देखते हैं, जब निर्गमन 12 अध्याय में आते हैं, तो जब इनको छुड़ाना था तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम मेमने के लहू को अपने चौखटों पे लगाए कर रखना, और जिन चौखटों पे लहू का निशान रहेगा, मेमने के लहू का निशान रहेगा, उन लोगों को, उनके पैलौटों का मैं छोड़ दूंगा और बाकी को मैं नाश करूंगा। और उससे फिरौन के राज में एक बहुत ही अधिक भयानक भाव, एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया कि फिरौन और उसके सारे लोग डर गए और परमेश्वर ने इसराइलियों को वहां से छुड़ा लिया, दूसरा स्थान था। जब वे छोड़कर आगे आए, मैं इस प्रभु भोज की आपको फाउंडेशन मिले आ रहा हूं। जब वो छोड़ करके वापस निकले तब परमेश्वर ने क्या कहा, निर्गमन में आई, निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 40 पद से, इस्राएल लोगों को मिस्र में रहते हुए 430 वर्ष हो गए थे, और ऐसा हुआ कि उन 430 वर्षों में के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से बाहर निकल आई। इसराइल इसलिए कि यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, मिस्र देश से बाहर निकाल लिया, वो पाप के बंधन से उसने बाहर निकाल लिया, हटा लिया, परमेश्वर ने उस गुलामी से बाहर निकाल लिया। शब्द ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर उनको उससे बाहर निकाल लाया, इसलिए कि यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, वो रात्रि यहोवा के निमित्त मनाने योग्य है। अब इसलिए चूंकि परमेश्वर ने उनके साथ अद्भुत काम किया था, उनको छुड़ा लिया था, तो वहां पर एक रात्रि को एक उत्सव मनाने के लिए दिया गया, एक उत्सव उनको मनाना था कि हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, हम बंधन से छुड़ा दिए गए, हमें परमेश्वर ने पाप के बंधन से, जो मिस्र था गुलामी के बंधन से, उससे परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। और तब कह रहा है यहोवा के निमित्त ये रात्रि इसराइलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी मनाई जाए, इसराइलियों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, वो आने वाली जितनी पीढ़ी है वो मनाई जाए। अब उस समय परमेश्वर ने आ दिया था, क्यों, इसराइल लोग स्वतंत्र कर दिए गए थे, छुड़ा दिए गए, और इसलिए जब वो छुड़ा दिए गए तब परमेश्वर ने एक विधि ठहरा दी कि किस प्रकार से ये पर्व को मनाना, किस प्रकार से पर्व को मनाना। अब जब हम वाचा की बात करते हैं, वाचा की बात करते हैं, तो वाचा जो कवनेंट शब्द इंग्लिश में है, वाचा शब्द है, उसका एक असली अर्थ ही होता है एग्रीमेंट, जो दो जनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, परमेश्वर और परमेश्वर की प्रजा के बीच, ठीक है। हम कोई चीज किसी रीति से जब जमीन लेते हैं, तो जमीन लेते हैं वहां पर एक एग्रीमेंट करते हैं किसी दूसरे, तो ये वाचा को हमें समझना है किस रीति से। तो वहां पर ये उस समय परमेश्वर क्या कह रहा था, 40 पद परमेश्वर ने कहा, अब 43 पद में किस प्रकार से वो पर्व मनाया जाए, ध्यान दीजिए। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फसह के पर्व की विधि ये है, कोई भी परदेशी उसमें ना खाने पाए, अभी पर्व मनाने की विधि है, कोई परदेशी, क्योंकि अब क्या हो गए थे, इसराइली जो है परमेश्वर के लोग हुए थे, परमेश्वर के देश के हो गए थे, अब उसमें से जो परमेश्वर के छुड़ाए हुए नहीं है वो उसमें से ना खाने पाए, ठीक है। प्रत्येक मोल लिया गया दाम जिसका उस तुमने खतना कर दिया, वो तो उसमें से खा सकता। उस समय एक विधि थी जो खतना के इब्राहिम में दी गई, इब्राहिम को दी गई थी, वो मोल लिया गया, जिसको मोल लिया गया, अभी हम नए नियम में आएंगे, अभी पुराने नियम में मैं थोड़ा सा ला रहा हूं, उस प्रसावी मजदूर उसमें से कोई ना खाए, मजदूर कोई ना हो, वो एक ही घर में खाया जाए, उसमें से कुछ भी मांस तुम घर के बाहर ना ले जाना, और तुम उसकी कोई हड्डी ना तोड़ना। इसराइल की समस्त मंडली इसको अवश्य मनाए, इसराइल की समस्त मंडली इसको अवश्य मनाए। तो यह पर्व जो दिया गया था, उत्सव जो दिया गया था, यह स्वतंत्रता का उत्सव था, आजादी का उत्सव था, छुटकारे का उत्सव था, छुटकारे का पर्व था। इसको ध्यान दीजिए, वहां से शुरू हुआ, वहां से कि परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ाया है, और ये अब धीरे धीरे कैसे बढ़ता चला गया, कैसे बढ़ता चला गया। लेकिन बाद में जब आगे देखते हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर किस रीति से व्यवहार कर रहा है, तो बहुत लंबी इस कहानी, फिर बाद में हम जाते हैं वाचक का संदूक बनता है, वाचक के संदूक को लिया जाता है, वाचक का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान होता है, और तब एक समय ऐसा आता है ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले इब्राहिम के, जब बाइबल को हम अध्ययन करते हैं तो करीब 7 अलग अलग वाचा का वर्णन है, 7 अलग अलग, लेकिन ये वाचा परमेश्वर ने मूसा से बात, मूसा से बांधने के बाद अब परमेश्वर ये पुरानी वाचा कहलाती कि पुरानी वाचा के अनुसार ये तुम्हें करना, लेकिन परमेश्वर ने कहा ठीक है, एक समय आएगा मैं नई वाचा को तुम्हारे सामने रखूंगा, और वो नई वाचा तब परमेश्वर का वचन हम देखते हैं जो उस दिन यर्मिया में कहा, यर्मिया में परमेश्वर उस नई वाचा के बारे में बात करता है, यर्मिया उसका 31 दिन, तब 31 पशु क्या कहता है, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की वाणी है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के लिए एक नई वाचा बांधूंगा, एक नई वाचा। जब हम क्रोन्थियों में आते हैं और क्रोन्थियों में पढ़ते हैं, तो जब हम उस लहू को देखते हैं तो पौलुस कहता है ये नई वाचा का कटोरा, नई वाचा का लहू, नई वाचा का लहू। सो ये नई वाचा वहां पर ऑलरेडी निर्धारित कर दी गई थी, क्यों लोग छुड़ाए गए थे, अब चल रहे थे, लेकिन बार बार उतार चढ़ाव उनके जीवन में, परमेश्वर से व्यवहार कर रहा है। उस समय ऐसी लंबी यात्रा में याजक हो चाहे राजा हो चाहे नबी हो कोई भी हो, सब समय पर भ्रष्ट हुए, लेकिन परमेश्वर उनको कैसे संभालता कि अपनी प्रजा को। पर तब कह रहा वो नई वाचा, अब वो नई वाचा क्या होगी, जब मैं नई वाचा बांधूंगा उस वाचा के समान नहीं जिसने, जिसे मैंने उनके पूर्वजों से उस दिन बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया था। उस समय मिस्र देश से हाथ पकड़ के मैं तुम्हें लेकर आया था, परमेश्वर कह रहा है। उनसे निकलना मुश्किल था, फिरौन नहीं चाहता था, आप जानते हैं कितना फिरौन पीछे पड़ा रहा, फिरौन की सेना पीछे गई, सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर उनको निकाल के लाया। मेरे पे सच है, ये चित्रण है मेरे और आपके जीवन कि परमेश्वर ने अपना पहले हाथ खींच पाक मुझे और आपको पाप से निकाला है। बाइबल कहती है कि जब हम पापी थे ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा, उसने पहल करी, उसने पहल। दाऊद कहता है परमेश्वर से, कहता है परमेश्वर तूने मुझे खींच कर निकाला, ठीक उस तरह से हम भी एक दिन पाप में थे, दलदल में थे, कीचड़ में थे, नाश हो थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसमें से खींच कर निकाला। कैसे निकाला अभी हम और आगे देखेंगे। तब कह रहा है मिस्र देश से बाहर निकाला है, यद्यपि मैं उनके लिए पति समान था फिर भी उन्होंने मेरी उस वाचा का तोड़ा था, यहोवा की वाणी, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है, यहोवा कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। पहले कहां लिखी गई थी व्यवस्था, पहले व्यवस्था लिखी थी पटरियों में लिखी गई, जो पटरी थी उसमें लिखी गई थी, फिर चमड़े पे लिखी गई थी, समय पे देखते जाइए, फिर चमड़ों पे, चमड़ों को रोल करके लिखा रखा जाता था, उनमें लिखी गई थी, लेकिन अब वो कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं उनके हृदय में डालूंगा। अब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हृदय में बोया जाता है, और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। अब परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में वचन डाल रहा, ये चीज है, जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पास आते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो वो वचन हमारे हृदयों में वास करने लगता है, हृदय में बसने लगता है। वो कह रहा है मैं उनके हृदय में करूंगा, कह रहा है यहोवा मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों में रखूंगा, वो स्थान बन जाए, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा तथा वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्हें अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को फिर से ये सिखाना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा, यहोवा की वाणी है। ये नई वाचा में भेद पाया था, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर स्थित पर आए, कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, वो जीवन परिवर्तित करने के लिए आया, समझे, वो जीवन पर प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और सच है। हम उस यीशु को स्वीकार करते हैं, उस मार्ग को स्वीकार करते हैं, उस ज्योति को स्वीकार करते हैं, उस जीवन को स्वीकार करते हैं जो हमें परिवर्तित करता है, हमारे मन को परिवर्तित करता है, हमारे मस्तिष्क को परिवर्तित करता है, हमारे सोच को परिवर्तित, हमारे धर्म को परिवर्तित। एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने से कोई फर्क नहीं होता, धर्म परिवर्तन मनुष्य को नहीं बदलता, और यहाँ पर बाइबल धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं सिखाता। धर्म परिवर्तन धर्म मनुष्य को नहीं बदलता, पर मनुष्य को परमेश्वर का वचन बदलता है, परमेश्वर का वचन जीवन प्रदान करता है उसके हृदय को। वो कह रहा है मैं ही करूंगा और उनके अधर्म को क्षमा करूंगा। सो इस नई वाचा को समझना है, ये नई वाचा किसके द्वारा है। अभी हमने यशा उसका 53 अध्याय पढ़ा, और यशा 53 अध्याय उस नई वाचा का आधार है, और इसीलिए यशाया 700 से लगभग 700 साल पहले ये भविष्यवाणी कर रहा है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करेगा, किस प्रकार से वो मारा जाएगा, किस प्रकार से गाड़ा जाएगा, किस प्रकार से मेरे और आपके लिए यातना सहेगा, निंदा सहेगा, पूरी रीति से वो 53वां अध्याय जो है पूरे पुराने नियम का एक सुसमाचार का केंद्र है। सुसमाचार 53वां, इसीलिए जब खोजे को बारे में देखते हैं प्रीतकाम उसके 8वें अध्याय में, खोजे भी इसी अध्याय को पढ़ रहा था और फिलिपुस ने इसी के द्वारा उसको सुसमाचार सुनाया था कि प्रभु यीशु मसीह। अभी उस समय खोजे को इतना नहीं मानता, लेकिन वो कहता है वही 53वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन है कि वो किस प्रकार से संसार में आएगा, आकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान करेगा, मारा जाएगा, लोग उसको नहीं पहचानेंगे, लोग उसे मुंह फेर लेंगे, लोग उसकी निंदा करेंगे, लोग उसका अपमान करेंगे, लेकिन फिर भी वो मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान करेगा और उसके लहू के द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। वो लहू जो लहू अदन की वाटिका में आदम के नंगेपन को ढांप सका, वो लहू जो मेमने का लहू जो इसराइलियों को वहां से छुटकारा दे सका, अब ये लहू उस मेमने का है जो प्रभु यीशु मसीह जगत का मेमना है। और आज भी जब प्रभु भोज में आते हैं तो ये है। अब ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है और उसने उस लहू के द्वारा मुझे और आपको मिस्र से निकाल लिया, पाप से निकाल लिया और निकाल करके वो मुझे और आपको कनान में ले जा रहा, कनान में प्रवेश करा रहा, जैसे मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के बाद यहोशू को खड़ा किया और यहोशू ने कनान में प्रवेश कराया। वो सच है, मूसा प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, मूसा समाप्त हो गया है, अब यीशु ने मुझे और आपको कनान में पहुंचाया, यीशु ने मुझे और आपको कनान में, मूसा का स्थान यीशु मसीह ने ले लिया, इस बात को मैं समझ। तो जब हम प्रभु भोज में आते हैं तो इसकी महत्ता को समझ। अब लेकिन इसके साथ विधि थी कि तुम इसमें कैसे संभागी होना, इसीलिए आगे कहता है कि जो कोई इसमें संभागी होता है अपने आप को जांच ले, देख ले। हाँ, हम नशा कर रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और प्रभु भोज में, इसी शब्द से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसी जीभ से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसी चीज से हम अपशब्द बकते हैं, नहीं गलत, इसी जीभ से हम झूठ बोलते हैं, गलत, इसी जीभ से हम कुछ और करते हैं, गलत है, हमारे एक्शन, हमारे हाथ, हमारे व्यवहार, हमारा जीवन, इस बात को जाने, हम निर्बल हैं, हमसे त्रुटि हो सकती है, लेकिन त्रुटि में निरंतर जीवन व्यतीत करना वो गलत है। हम चलते चलते प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तुझे अपने पांव धोने पड़ेंगे, चलते चलते हम नाली में हमारे पांव आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही नाली में पांव आएगा हम क्या करेंगे, हम साफ करेंगे, हम उसी नाली में और पांव लेके चलते चले नहीं जाएंगे, हम निकालेंगे, साफ करेंगे, ये हमारा जीवन, हमारा जीवन ही है। सो सुसमाचार, मैं इसीलिए बार बार सुसमाचार की जब बात करता हूं तो मैं लोगों को समझाना, सुसमाचार केवल ये नहीं है प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जीता, तीसरे जीता और फिर से आएगा, केवल सुसमाचार ये नहीं, सुसमाचार प्रतिदिन का जीवन है सुसमाचार। इसीलिए मैं कहता हूं सेविंग फेथ लिविंग फेथ, हमने विश्वास के द्वारा उद्धार को पाया है, सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास किया, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, अब प्रभु हमारे हमसे क्या चाहता है, हम प्रभु हमारे दिन प्रतिदिन क्या चाहता है। और कई बार लोग इस बात को नहीं समझने पाते, क्यों आज लोग भटकते हैं, क्यों भ्रमित होते हैं, क्यों तरह तरह बातें करते हैं, जो लिविंग फेथ है वो और यही चीज को कहते हैं उसको भूल जाते हैं, और बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहता है कि प्रभु भोज मेरे और आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि मैं और आप प्रतिदिन उसमें आकर के अपने आप को देख सके, जांच सके, विचार कर सके और प्रभु से क्षमा मांगते हुए, प्रभु से अपने उसके लहू से शुद्धता प्राप्त करते हुए और अधिक एक कदम आगे बढ़ जाए पवित्रता में, उसकी आगमन की आशा में एक कदम और आगे बढ़े। सो ये मेज एक कीमती मेज है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुए, उन्होंने कीमत चुकाई। तो संक्षिप्त में मैंने इस बात को ला के सामने, बहुत सारे पद हैं बाइबल पुराण और इब्रानी में, इब्रानी 9 अध्याय अगर पढ़ेंगे, मैंने जानबूझ के नहीं, इब्रानी 9 अध्याय एक ऐसा अध्याय जो सबसे अधिक लहू के बारे में बात करता है, लहू के तीन काम थे, लहू शुद्ध करता था, लहू के द्वारा शुद्धता प्राप्त होती थी, लहू छुटकारे का प्रतीक था, लहू शुद्धता का प्रतीक था, लहू क्षमा का प्रतीक था, ये तीन चीजें थी। लहू छुटकारे का प्रतीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जल्दी से, निर्गमन 12:13, शुद्धता का प्रतीक है निर्गमन 29:21 क्षमा का प्रतीक है। लव व्यवस्था 17:11 और इब्रानियों 9:22 लव व्यवस्था 17:11। सो लव छुटकारा का के लिए था, क्या नाम से, निर्गमन 12:13। लव शुद्धता के लिए था, निर्गमन 29:21। लव क्षमा के लिए था, लव व्यवस्था 17:11 इब्रानियों 9:22। और भी बहुत सारे पद हैं जिसको मैं नहीं छू रहा हूं। जो वाचा उसने हमें दी, सनातन की वाचा, शांति की वाचा, नई वाचा सनातन की वाचा है, शांति की वाचा है, पवित्रता की वाचा है, नई वाचा ही है। और इसलिए इसमें मैं अक्सर कहता हूं, प्रभु को मालूम था कि मेरे लोग कहां का इकट्ठा होंगे। मान लीजिए कल हमारे देश में, प्रभु धन्यवाद हो इस वर्ष क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के अभी तक हमने कोई ऐसी घटना को नहीं सुना जहां पर कहीं क्रिसमस के समय विरोध हुआ, नहीं मान, बल्कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से सहयोग मिला है। और जितने हमारे साथ जाइन के साथ हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, चाहे भदोही हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे उन्नाव हो, आजमगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, कहीं भी, सब जगह मैंने फोन करके लोगों से बात करी और प्रभु का धन्यवाद हो सब जगह अच्छी तरह से क्रिसमस को मनाया है और कितने लोगों सुसमाचार सुना सके। लेकिन कल स्थिति बदल जाए, स्थिति बदल जाए, आपको मालूम है 5 या 6 या 7 जन इकट्ठा होकर के कहीं भी प्रभु की मेज में समा दिए, प्रभु ने ऐसा प्रतीक ठहराया। अब अगर मान लीजिए प्रभु कहता कि इसराइल यरूशलेम में वहां पर तुम जाओगे तो वहां पर एक प्रतीक होगा जिससे तुम देख करके जानोगे कि यहां यीशु मसीह दुनिया में आया था, उसने ऐसा करा। क्या हम सब यरूशलेम जा सकते हैं? नहीं जाते, बहुत नहीं जाते। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए इतनी सुंदर विधि ठहराई है कि हम विश्वास करने वाले लोग, मुट्ठी वाले लोग कहीं भी इकट्ठा होकर के इस मेज को बना करके स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन। सो ये मेज महत्वपूर्ण है, कीमती है, महत्वपूर्ण है, इसकी हमें कीमत समझ और इसका हमें आदर करना है, इसका हमें आदर करना है, इसका हमें। और इसलिए इस साल के आरंभ में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थनाशील रहिए कि परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप अधिक से अधिक परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर मेज में समागे होते हुए, विश्वास समागे होते हुए परिवार के साथ प्रभु में आगे बढ़ सके और प्रभु को आदर दे सके। जब तक वो ना आए तुम उसके नाम का प्रचार कर। मैं नकारात्मक बात में नहीं जा रहा हूं, न्याय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु इस बात को कहना चाह रहा है हमारा जीवन प्रभु के नाम का प्रचार करने वाला बन सके। स्वयं प्रभु की मेज में जाएंगे।